ఓం శాంతి. నిరాకారి, నిర్వికారి ఔర్ నిరహంకారి బ్రహ్మ బాబా అవ్యక్త హోనే పహలే అంతిమ దినో మే బాబా నే ఇన్ తీన్ శబ్దో కా ఉచ్చారణ కియా థా. మీఠే బచ్చే, నిరాకారి బనో, నిర్వికారి బనో ఔర్ నిరహంకారి బనో. వాస్తవ మే యే సారీ జ్ఞాన కా సార హై. లేకిన్ సబ్సే మహత్వపూర్ణ బాత్ హై, నిరాకారీ స్థితి కీ అనుభూతి కర్నా. హమ్ సభీ కా లక్ష్య హై. యోగ కీ బహుత్ శ్రేష్ఠ స్థితి, ఊంచీ స్థితి బనానా, తో ఉస్కే లియే సబ్సే పహలా కదమ్ హై నిరాకారీ స్థితి కో పక్కా కర్నా. హమ్ వరల్డ్ స్పిరిచువల్ యూనివర్సిటీ మే బేటే హైం ఔర్ బహుత్ బడీ లక్ష్మీ నారాయణ జైసీ డిగ్రీ లేనే కా లక్ష్య హమారా హైం. లేకిన్ ఇత్నీ ఊంచీ డిగ్రీ లేనా హైం తో జైసే లౌకిక పడాయీ మే ఏ బీ సీ డీ ఏ చార్ అక్షర్ శురువాత్ మే పడాతే హైం. కితనీ భీ ఊంచీ డిగ్రీ లేనీ హో ఐఏఎస్ కి యా కిసీ భీ ప్రకార కి, లేకిన్ ఉస్కే పహలే ఆవశ్యక హై యే చార్ అక్షర్ లిఖనా ఆనా. తో ఏసే హీ ఇస్ యూనివర్సిటీ మే భీ ఊంచీ డిగ్రీ లేనే కే లియే హమే భీ ఇన్ చార్ అక్షరో కో లిఖనా ఆనా చాయే. ఏ అర్థాత్ ఆత్మా కే జ్ఞాన్ కే సాత్ ఆత్మా కా అనుభవ కర్నా, బీ అర్థాత్ బాబా కో నిచ్చే కే సాత్ యాద్ కర్నా, సీ అర్థాత్ చక్రో కో ఘుమాతే రహనా, ఔర్ డీ అర్థాత్ డ్రామా కే రాజ్ కో యథార్థ రీతి సే సమజ్నా. ఈ చార్ అక్షర్ లిఖనే ఆయే తో భీ హమారా బేడా పార్. హమ్ బాబా కే పాస్ క్యో ఆయే హై? హమ్ బాబా కే పాస్ ఆయే హై బహుత్ సుందర్ బహుత్ ఊంచీ 21 మంజిల్ కీ అప్నే హీ క్యారెక్టర్ కీ బిల్డింగ్ బనానే కే లియే యహాం ఆయే హై. బాంబే మే బహుత్ ఊంచీ ఊంచీ బిల్డింగే హోతీ హై, లేకిన్ జితనీ ఊంచీ బిల్డింగ్ ఉత్నా ఉస్కా గహరా ఫౌండేషన్ హోనా చాయే, నహీ తో వో బిల్డింగ్ గిర్ సక్తీ హై. తో ఏసీ 21 జన్మో కీ 21 మంజిల్ కీ బిల్డింగ్ క్యారెక్టర్ కీ బనానే కే లియే ఆయే హై యహాం. ఇత్నీ ఊంచీ బిల్డింగ్ బనానా హై ఔర్ ఉస్కా ఫౌండేషన్ హై ఆత్మ అభిమానీ స్థితి. आप सोचो कितना गहरा आत्म अभिमानी स्थिति का फाउंडेशन हमें पक्का करना होगा, और हम उस फाउंडेशन पर जब काम करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान देते हैं, तो माया उसमें संशय का बॉम्ब रख देती है, और जैसे वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, सारी बिल्डिंग सेकंड में कोलैप्स हो जाती है। तो माया कितना भी संशय हमारे मन में क्रिएट करने का प्रयास करें, लेकिन हमें पूरे निश्चय के साथ इस बिल्डिंग को बनाना है, फाउंडेशन को पक्का करना है। ब्रह्मा बाबा को जब देखते हैं तो बाबा को देखकर सब हैरान होते हैं कि क्या बाबा का तकदीर है, कितनी ऊंची सुंदर कैरेक्टर की उनकी बिल्डिंग है, मुझे भी ऐसी बिल्डिंग बनाना है। ऐसी प्रेरणा हमें बाबा से मिलती है। इसलिए थोड़ा सा हम इस ज्ञान मार्ग में पुराने हो जाते हैं, 2-5-7 साल, तो हमें थोड़ा सा अहंकार आता है, ये क्या आत्मा आत्मा का पाठ, ये तो नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं, मैं तो पुराना बच्चा हूं। और ये सूक्ष्म अहंकार हमें उस पर मेहनत करने नहीं देता है। फलस्वरूप हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं और लड़खड़ाते रहते हैं, स्थिति हमारी हलचल में आती ही रहती है। इसलिए हमें ये बात पक्की करनी है, ये आत्मा का पाठ पहला पाठ है, अंतिम पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। यहां से आपको अपनी कार से जाना है अहमदाबाद, कार बढ़िया है, लेकिन कार को कैसे स्टार्ट करें ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कैसे स्टार्ट करते हैं, हैं जी भाई साहब, चाबी घुमाई, बैटरी स्टार्ट हो गई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे हमें बाबा ने पुरुषार्थ रूपी कार दी है, लेकिन उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कला हमारे पास होनी चाहिए। कौन सी कला है? जब तक स्टार नहीं समझते हैं तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, चाहे कितना भी घंटा आप प्रयास करते रहो। मैं चमकता हुआ स्टार हूं ऐसा समझते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन हम केवल स्टार नहीं हैं, हम कौन हैं? हां जी बोलो ना, कौन हैं हम? सुपर स्टार हैं। सारे बैठे तालियां तो बजाओ जरा एक बार। बाबा सुप्रीम स्टार है और हम सभी सुपर स्टार हैं, हीरो हैं। लेकिन जो जीरो समझता है वही हीरो बनता है, जीरो नहीं तो हीरो नहीं। जितना स्वयं को जीरो अर्थात बिंदु समझेंगे उतना हीरो पाठधारी हम बनते जाते हैं। इस देह रूपी डिब्बी में जो आत्मा रूपी हीरा है, हीरा समझते ही हीरो बनते जाते हैं। ये डब्बी, इसकी कितनी भी वैल्यू हो लेकिन उसके अंदर में जो हीरा है उसकी सबसे जास्ती वैल्यू है। सोल समझते हैं तो अपने गोल के तरफ आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। बॉडी समझते हैं तो पिछाड़ी की ओर चले जाते हैं। इसलिए सोल समझकर गोल के तरफ आगे बढ़ते रहने में ही हमारी भलाई है। इसलिए 24 घंटे हमें झूठा भान, देह का भान रहता है। कितना घंटे? 24 घंटे। स्वप्न में भी हमें यह नहीं भूलता है कि मैं शरीर हूं। ये झूठा भान 24 घंटे रहता है तो ये आत्मा का भान, सत्य भान भी 24 घंटे जब तक नहीं रहता है तब तक इस मेहनत को हमने छोड़ना नहीं है। ये शरीर का भान नकली है, आत्मा का भान असली है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो बाबा मुरली में हर रोज आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं, कराते हैं। कहीं सोचते हैं क्यों बाबा बार बार आत्मा के पाठ को दोहराता है, बाबा को दूसरी बात कोई सुस्ती नहीं है। वो सुप्रीम टीचर हैं, सुप्रीम टीचर अच्छी तरह से जानता है मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को अगर आगे बढ़ाना है तो ये पहला पाठ उनको पक्का करना होगा। तो जैसा हम इस अभ्यास को पक्का करते हैं उतना हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। हम यहां क्यों आए हैं, बाबा के पास क्यों आए हैं? आध्यात्मिकता की शक्ति को प्राप्त करने के लिए आए हैं। आध्यात्मिकता अर्थात जितना आत्मिक भाव बढ़ता है उतनी आध्यात्मिकता की शक्ति हमारे में बढ़ने लगती है। इंग्लिश में उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। जितना स्पिरिट स्वयं को समझते हैं उतनी स्पिरिचुअलिटी हमारे में बढ़ती जाती है। जितनी भी ब्राह्मण संसार में आत्माएं चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे अगर आप एक प्रश्न पूछेंगे, आपने इतनी ऊंची स्थिति बनाई इसका क्या सीक्रेट है बताइए। बिजनेस में कोई आगे बढ़ता है उसका कुछ सीक्रेट होता है, पॉलिटिशियन में जो आगे बढ़ता है उसका भी कुछ सीक्रेट होता है। तो बाबा के पास आने के बाद श्रेष्ठ स्थिति अगर बनाना है तो उसका भी सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट है? पहले पाठ को घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के हमें पक्का करना है तो आप इतनी सुंदर स्थिति बनाने में सफल होंगे। तो कहने का भाव है ये आत्मा का पाठ हमें बहुत पक्का करना है, क्योंकि जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बुद्धि बाबा के तरफ जाती है और योग बाबा से लगता है और विकर्म हमारे भस्म होने लगते हैं। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। हम देखो देवी देवताओं के मंदिर में हमेशा अखंड दीपक जगाते हैं। भगत लोग जो हैं नींद भी फिटाते हैं ताकि ये ज्योति बुझे नहीं। किसकी यादगार है ये? हम जो होनहार देवी देवताएं बनने वाले हैं, उन्होंने संगम युग में इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा की ज्योत अखंड जगाकर रखने का प्रसाद किया है। उसकी वो यादगार आज तक भी चलती आ रही है। तो अभी बात आती है आत्मा का अनुभव करने की विधि क्या है। एक बात बुद्धि में हमें पक्की बिठानी है, इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अलौकिक अनुभव करना है तो उसकी एक शर्त है, उसकी एक कंडीशन है। कौन सी? जब तक स्वयं को अणु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, तब तक किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं हो सकता है। और अणु समझते ही, बिंदु समझते ही आपको अलौकिक अनुभव की खान प्राप्त होगी, आप पर अलौकिक अनुभव की वर्षा होती रहेगी। इसलिए स्वयं को अणु बिंदु समझना है। अभी बिंदु आत्मा अनुभव करने की विधि क्या है? विधि अगर यथार्थ है तो उसकी सिद्धि अर्थात आत्मा के गुण और आत्मा की शक्तियों की अनुभूति हमें अच्छी तरह से होती है। विधि बड़ी सरल है। आत्मा का अनुभव करने के लिए पहले आत्मा को देखना होगा। जब तक आत्मा को देखते नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। शरीर को हम इन आंखों से आईने में देखते हैं, ऐसे बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा के स्वरूप को हमें देखना है। जन्मते ही बाबा ने हमें दिव्य चक्षु का दान दिया है। हम पहले अंधे की औलाद अंधे थे, पांडव संप्रदाय के नहीं थे, कौरव संप्रदाय के थे, ठोकरे खा रहे थे। बाबा को दया आ गई, मेरे बच्चे ठोकरे खा रहे हैं। बाबा ने आते ही सबसे पहले हमें दिव्य दृष्टि का दान दिया, लो बच्चे ये तुम्हारी सौगात बर्थडे के। तो उस दिव्य नेत्र से हमें आत्मा को देखना है। मैं कौन हूं? मैं एक अजीब सितारा हूं और एक गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि यह आसमान के सितारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये सितारा देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। एक छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटता नहीं, कभी घिसता नहीं। इसलिए गजब का सितारा हूं। तो एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को देखना है और देखने के बाद उसमें हमें स्थित होना है। मैं आत्मा हूं, लेकिन किस प्रकार के मैं आत्मा हूं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति की किरणें, शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो आत्मा के जो निजी 7 गुण हैं, दिव्य गुण आत्मा का श्रृंगार है, लेकिन आत्मा के मूल गुण निजी गुण हैं 7, सुख शांति, प्रेम पवित्रता, ज्ञान आनंद शक्ति। इन 7 गुणों को बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करते जाना है। और जितना अनुभव हमारा बढ़ता जाता है, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है, आत्मा का जो ऑरा है, वो विशाल बनता जाता है। कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहां हम जाते हैं हमारा ऑरा काम करने लगता है। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात है आत्मा को देखने का परसेंटेज को बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति बनाना, केवल आत्म अभिमानी नहीं संपूर्ण आत्म अभिमानी। और दूसरी बात है उस स्थिति में हमें स्थित होते जाना है, बहुत अच्छी तरह से आत्मा के अनुभव को एंजॉय करना है। तो जैसे जैसे आत्मा का अनुभव बढ़ता जाएगा उसकी गहराई में हम खोते जाएंगे तो ऑटोमेटिक बाबा की याद में रहने का अनुभव करते जाएंगे। जितना आत्मा का अभ्यास सहज होता है, नेचुरल होता है, निरंतर होता है, उतनी बाबा की याद सहज, नेचुरल और निरंतर रहती है। तो एक सेकंड में हमें अपने असली स्वरूप में स्थित होना है, उसके लिए लंबे समय का अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं? चमकता हुआ स्टार हूं। निराकारी शिव बाबा से हमारा बहुत प्यार है, प्यार है सबका। उसकी निशानी क्या है? निराकारी बाप से प्यार है, उसकी निशानी है उनके जैसे निराकारी स्थिति में स्थित होना। अगर निराकारी स्थिति में स्थित नहीं रहते हैं तो हमारा प्यार नहीं है, केवल दिखावटी प्यार है। क्योंकि जिससे प्यार होता है उसके जैसा बनने का प्रयास हम करते हैं। तो बाबा की दृष्टि हमेशा निराकारी रहती है और स्थिति भी ऑटोमेटिक निराकारी रहती है। अभी ये आत्मा का अभ्यास आप 2 साल से 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं, इस अभ्यास में आपके कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है वो कैसे आपको पता चलेगा? हाँ जी, क्या उसका मीटर है चेक करने का? हाँ जी, जितने पुराने उतने उसकी दिव्यता की शक्ति, रूहानियत की शक्ति बढ़ती रहना चाहिए, नहीं तो पुराने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जितने हम बाबा के मुरब्बी बच्चे बनते हैं उतनी आत्मा की स्थिति भी हमारी पक्की होती है, गहराई की होती है, दिव्य स्वरूप में स्थित होने की और दिव्य स्वरूप को देखने की दिव्यता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। रूह समझकर, रूह देखने की रूहानियत की शक्ति बढ़ती जाती है। तो आत्मा के अभ्यास में आपकी कितनी उन्नति हो चुकी है, कितनी आपने करनी है, इसको चेक करना अगर है तो उसकी 5 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है आत्मिक स्मृति में टिकना। सबसे पहले बाबा हमें आत्मा की स्मृति दिलाते हैं। कभी स्मृति होती है, कभी विस्मृति होती है। तो पहली स्टेप है आत्मिक स्मृति में स्थित होना। अभ्यास करते जाते हैं। दूसरी स्टेप है आत्मा के भान में स्थित हो जाना, आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाना। जैसा अभ्यास हमारा पक्का होता जाता है, तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि पक्की होना। जो भी सामने आता है उसके ब्रुकटी में आत्मा हमें नजर आना। ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक दृष्टि इतनी पक्की की थी, बाबा की दृष्टि को कहते थे एक्सरे विजन। एक्सरे जो होता है वो पेनेट्रेट होता है शरीर में और इंटरनल ऑर्गन का हमें फोटो देता है। तो ऐसे एक्सरे विजन अर्थात भ्रुकुटी के अंदर जो आत्मा बैठी है उसको स्पष्ट देखना ब्रह्मा बाबा की विजन एक्सरे विजन थी। तो ये तीसरी स्टेप है। और जैसी जैसी आत्मिक दृष्टि पक्की होती है चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति। आत्मिक वृत्ति अर्थात आत्मा समझने की आदत पक्की हो जाना, हैबिट हो जाना, नेचर बन जाना। जैसे जैसे आत्मिक वृत्ति हमारी पक्की होती है पांचवी स्टेप है आत्मिक कृति। अर्थात कर्म करते समय भी आत्मा के भान में स्थित होने की क्षमता को प्राप्त करना। जब हमारी आत्मिक कृति होती है उसके बाद आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार पक्के होते हैं। वो संस्कार आत्मा अपने साथ लेके जाती हैं और उसके आधार पर 21 जन्मों तक नेचुरल आत्मिक स्थिति बनी रहती है। ये होमवर्क 84 जन्मों का होमवर्क है, एक जन्म का नहीं, 84 जन्मों का होमवर्क है। 63 जन्मों का जो देह का भान आत्मा में कूट कूट के भरा पड़ा है उसको हमें मिटाना है। और 21 जन्म नेचुरल आत्मा का भान रहे उसको हमें जुटाना है। आप सोचो कितनी आपने को मेहनत करनी होगी। तो जितना समय हमें इस पर देना चाहिए उतना हम नहीं देते हैं, इसलिए हमारी स्थिति मजबूत नहीं बनती है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं, मैं कौन हूं इस पहेली का हल पाने के लिए। हुआ माए ये पजल है, ये पजल है, ये पहेली है। इस पहेली का हल जिसको मिलता है वो अपने ब्राह्मण जीवन को बहुत एंजॉय करता है। और इस पहेली का हल जिसको नहीं मिलता है वो हल चलाने जैसी मेहनत करता रहता है और हमेशा हलचल में आता ही रहता है। तो मैं कौन हूं, केवल मैं ज्योति बिंदु आत्मा नहीं हूं, उसके साथ और भी कुछ हूं, विशेष हूं, महान आत्मा हूं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं। इस बात को हमें अच्छी तरह से जानना है। तो इन स्टेप्स को हमें चेक करना है और अपने से पूछना है कि मैं आत्मा कहां खड़ी हूं, कौन सी स्टेप पर मैं खड़ी हूं, कितना मुझे पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बाकी है और ये थोड़े समय में हमने पूरी तैयारी करना है। लेकिन बाबा कहते हैं आप युद्ध के मैदान में हो, ये माया दुश्मन का रावण का राज है, आपका राज सतयुग त्रेता युग में होगा, थोड़ा संभल कर रहना, कभी भी माया बॉक्सिंग करने के लिए आएगी और आपको हरा कर जाएगी, क्योंकि ये हमारी राज नहीं है। तो माया से बॉक्सिंग में आपको जीतना है या हारना है, बोलो भाई लोग पता है पहले। हाँ जी, हाथ खड़ा करो ना जो जीतना चाहते, सभी चाहते। वाह बहुत अच्छा, बोरीवली की जोन तो भाई सबसे आगे है, बहुत अच्छा आगे है ना। बोरियां भर भर के मिलती है बाबा के खजानों की, तो भाई बोरीवली तो भाग्यशाली है ना। तालियां तो बजाओ जरा। हाँ जी जी जी, अच्छा जी जी हाँ जी। अभी देखो बॉक्सिंग माया से कैसी होती है, मेरे तरफ देखना। आपने कहीं बोरीवली में मैंने सुना है, फिर भी थोड़ा दोहराता हूं। हम युद्ध के मैदान में हैं, हम रूहानी योद्धे हैं। जब से हमने बाबा का हाथ पकड़ा है, माया को ओपन चैलेंज किया है, माया तुम किसी भी रूप में आओ तुम मुझे हरा नहीं सकती है। माया कहती ठीक है मैं भी देखती हूं तुमको। तो जैसे हमारा इधर उधर ध्यान चला जाता है और अपने को देह रूपी बॉक्स समझते हैं, है आत्मा रूपी हीरा और समझते हैं देह रूपी बॉक्स, तो ये देह माया की प्रॉपर्टी है। तो बॉक्स समझते ही माया आती और एक मुक्का मारती है और हमें नीचे गिराती है, और पांचों उसके साथी जो है डाकू पांचों विकार कहते हैं आओ इसके मालिश करो, ये खूब पिटो इसको, ये मेरा कस्टमर था 2500 साल तक, पता नहीं अभी कौन से दुकान पर शिव बाबा के दुकान पर जाता, इसको पीटो। और पांचों डाकू आते हैं ऐसा बुरी तरह से पीटते हैं, बाल पकड़ते हैं, नाक पकड़ते हैं, छाती पर बैठते हैं, ऐसे पीटते हैं। दया माया नाम की कोई चीज नहीं है, और पीट पीट के बिचारे को बेहोश कर देते हैं। बाबा ऊपर से देखते हैं ये मेरे लाल का क्या हाल हो चुका है बेचारे का। तालियां बजाओ ना भाई। मुझे जाना होगा, मेरे लाल को ठीक करना होगा, बेहोश पड़ा है, आत्मा हूं ये होश ही खत्म कर चुका है। तो माउंट आबू के पहाड़ों पर आते हैं बाबा, और वहां से मुरली रूपी संजीवनी बूटी बोरीवली भेजते हैं और कहते हैं दिव्या दीदी, दीदी जी इनको ये संजीवनी बूटी सुंघाओ, बिचारे को ये बेहोश पड़ा है। भाई तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, कोई मैं आत्मा आत्मा नहीं हूं। दूसरे दिन मुरली रूपी संजीवनी बूटी आती है, भाई मैं तुम्हारा बाप हूं, सदा सत्य बोलने वाला हूं, थोड़ी आंखें खोलो, मैं तुम आत्मा हो। थोड़ा होश आता है, अच्छा मैं आत्मा हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे महान आत्मा हो, ठीक है मैं महान आत्मा हूं, अरे सर्वशक्तिवान की संतान हो, ठीक है मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं। जब हम ऐसे अटेंशन में स्थित होते हैं, माया दूर से हमें देखती है, मैं इस पर अगर वार करूं तो मेरी दाल अभी नहीं गल सकती है, मुझे जाना होगा। तो कहते टाटा भाई जा तुम, भाग यहां से टाटा, हम भी तुमको टाटा कहते हैं। तो ये रूहानी मिलिट्री है, स्पिरिचुअल आर्मी है, इसका पहला मार्शल ला है अटेंशन प्लीज, अपने पर अटेंशन दो प्लीज, कि मैं आत्मा हूं। इस लॉ को अगर हम पालन करेंगे तो माया दुश्मन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती, हमारे पर वार भी नहीं कर सकती, हमारे सामने भी खड़ा नहीं रह सकती है। तो इस बॉक्सिंग में हमें जीतना है, तो इस अटेंशन में हमें रहना है। और जो बॉक्सिंग में जीतते हैं उनके चेहरे पर विजय का नशा सारे दिन भर में रहता है। मैं विजयी आत्मा हूं, विजय का तिलक भगवान ने मुझे पहले से ही जन्मदिन से ही लगाया हुआ है, तो इसलिए विजय का नशा हमें ऑटोमेटिक रहता है। अभी हम आत्मा का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हमें थोड़ा सा बोर होने लगता है, क्या बिंदी 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 आत्मा आत्मा होता है भाई कभी बोर, सच सच बोलो। हाँ देखो ये भाई सच बोल रहे हैं, होता है भाई बोर हाँ देखो वो बहन भी सच कह रही है, भाई क्यों बोर होता है बताओ। हमारी दादियों ने इतने वर्षों तक आत्मा का अभ्यास किया, 14 वर्ष वहां कराची में, कभी भी उन्होंने नहीं कहा ये बोर होता है। और हमें 2-4 साल के अभ्यास में ही हमें बोर होने लगता है, क्यों हो रहा है बताओ। हम छोटी सी एक मिस्टेक करते हैं। कौन से मिस्टेक करते हैं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा तो हूं, लेकिन आत्मा के साथ मैं महान आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं। करोड़ों में कोई और कोई, मैं भी कोई, भगवान ने मुझे चुना हुआ है, कोई विकारी भिखारी ने नहीं चुना है, करोड़ों में मुझे भगवान ने चुना है। तालियां भी नहीं बज रही भाई। स्वमान में स्थित रहना आना चाहिए। स्वमाना मैं आत्मा हूं, मान माना मैं महान आत्मा हूं। ये दोनों चीजें जब साथ साथ होगी तो कभी भी गारंटी है आपको ये अभ्यास बोर होगा ही नहीं। इस अभ्यास में आपकी रुचि और बढ़ती जाएगी, लेकिन स्वमान में स्थित होने का अभ्यास करना होगा। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से स्वमान रहता था कि मैं नारायण बनने जा रहा हूं, अभी बूढ़े शरीर में हूं, कल मैं मिचनो बनने वाला हूं। दुनिया जिसके पीछे पागल है वो मिचनो मैं बनने जा रहा हूं। पहले दिन से बाबा को स्वमान रहता था, तो इसलिए हमें भी स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास को पक्का करना है। केवल बिंदु आत्मा रुखी सुखी नहीं अनुभव करना है, लेकिन हम भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्माएं हैं, ऐसा हमें अनुभव करना होगा। लेकिन स्वमान में स्थित रहने की विधि आपको क्लियर होनी चाहिए। स्वमान के टाइटल कितनी बार लिखो उससे उतना फायदा आपको नहीं होगा। यथार्थ विधि पूर्वक आप स्वमान का अभ्यास करेंगे तो आपके चेहरे पर वो रूहानी नशा, वो रूहानी मस्ती ऑटोमेटिक दिखाई देगी। तो उसकी विधि बड़ी सरल है। स्वमान का टाइटल पहले हमने सिलेक्ट करना है। बाबा ने स्वमान के टाइटल की दुकान लगाई हुई है, 100 से जास्ती बाबा ने स्वमान के टाइटल हम बच्चों को मुरली में दिए हैं। उसमें से एक या दो टाइटल जो आपको खुशी दिलाते हैं वो टाइटल आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी टाइटल होगा, मैं तपस्विनी हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं महाकाली हूं, मैं राज ऋषि हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं विजय आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, कोई भी टाइटल आपको सेलेक्ट अपने लिए करना है। क्या सेलेक्ट किया भाई? आंख बंद करके 1 मिनट में अपने लिए स्वमान का टाइटल आप सेलेक्ट कीजिए, कोई भी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अभी स्वमान का टाइटल सिलेक्ट करने के बाद उस पर गहराई से हमें बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है। मान लीजिए आपने विश्व कल्याणकारी आत्मा का टाइटल लिया, उस पर गहराई से मनन करना है। विश्व कल्याणकारी आत्मा के बोल कैसे होते हैं? बहुत कल्याण के होते हैं। उनके संकल्प कैसे होते हैं? सबको सुख देने वाले सतोपदान संकल्प उनके होते हैं। उनके कर्म कैसे होते हैं? बहुत महान होते हैं। उनका व्यवहार कैसा होता है? बहुत श्रेष्ठ होता है। तो बहुत गहराई से उस पर हमें मनन चिंतन करना है, फिर उस स्वमान के सिंहासन पर बैठना है। मैं आत्मा सिंहासन है विश्व कल्याणकारी, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, सिंहासन पर बैठ गए, जैसे आप बैठ गए आपका बोलना चलना उठना बैठना सब कुछ बदल जाएगा और एक दिन आएगा वो टाइटल आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। नेचुरल आपको नशा रहेगा कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मुझे बाबा ने 88 में 19 मार्च को विश्व परिवर्तक आत्मा का टाइटल दिया है। क्यों बता रहा हूं मैं, जब मुझे स्मृति आती है मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, एक सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती है। क्यों? क्योंकि समान में स्थित होते ही ईश्वरीय नशे में हम झूमने लगते हैं और वो ईश्वरीय नशा हमें इस पुरानी दुनिया से ऊपर ले जाता है और बाबा के पास बिठा देता है। तो स्वयं ही स्वयं को मान देना, इसको कहते हैं समान में स्थित रहना। तो आत्मा का अनुभव बहुत अच्छी तरह से करने के लिए सिंहासन पर हमने जरूर बैठना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं जो भी सभा में बैठे हैं, एक एक आत्मा बहुत रॉयल आत्मा है, भगवान ने सिलेक्ट किए हुए हैं और सतयुग में होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां इस हॉल में सभा में बैठे हैं। लेकिन सतयुग में जब आपको सिंहासन मिलेगा, सिंहासन पर आप बैठेंगे तो आपके चेहरे पर वो रुहाब होना जरूरी चाहिए, लेकिन वो रुहाब वो मस्ती वो नशा अभी से ही हमें अनुभव करना है। कैसे? इस समान के सिंहासन पर बैठकर अनुभव करना है। इसलिए समान का हाथ हमें भगवान का साथ दिलाता है, ये हाथ हमें छोड़ना नहीं है। तो बाबा की याद में हम सहज स्थित होते जाएंगे तो बार बार हमें आत्मा के पाठ को पक्का करते जाना है। हमारा अंतिम पेपर कौन सा है? हाँ जी, उसके पहले मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, हमारा सबसे जास्ती प्यार किससे है? हाँ जी, बाबा से है। देखो भाई जी कहते हैं अपने शरीर से। अपना सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? शरीर से होता है। क्यों होता है भाई? 24 घंटे आपके साथ कोई रहता है, कितना भी नजदीक वाला संबंधी होगा, 2-4 घंटे 8-10 घंटे रहेगा, लेकिन 24 घंटे ये मेरा देह मेरे साथ रहता है। इसलिए अपने देह के साथ हमारा बहुत गहरा लगाव होता है। अभी बाबा कहते हैं बॉडी की कंपनी में रहना है या गॉड के कंपनी में रहना है, आपको चॉइस है। हाँ जी, बॉडी ने तो हमें गिरा दिया, बॉडी के कंपनी ने तो गिरा दिया, और गॉड की कंपनी हमें ऊपर ले जाने वाली है। ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का हाथ पकड़ना होगा। तो देह में रहते हुए देह से न्यारा अनुभव करना जरूरी है। लेकिन हिसाब है, जितना देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा। अगर आप अपने देह से 60% अभ्यास करते करते न्यारे हो गए तो 60% ही बाबा की कंपनी आपको मिलेगी। हमारा लक्ष्य क्या है? 100% देह से न्यारा होना और 100% बाबा का प्यारा अनुभव करना। इसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति की अनुभूति करना। इसलिए हमें इसका गुप्त ही गुप्त अभ्यास करते रहना जरूरी है। हम सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमें सबको अंतिम पेपर देना होगा, और उस अंतिम पेपर में हमें अच्छी तरह से मार्क्स लेना है तो उसकी तैयारी अभी से ही हमें करनी होगी। हमारा अंतिम पेपर कौन सा है? हाँ जी, पुराने भाई बैठे हैं सारे, रथी महारथी बताइए। अंतिम पेपर है एक सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा का प्यारा होना, ये हमारा पेपर है। ये शरीर किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन शरीर से एक सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा का प्यारा होना अर्थात उनकी स्मृति में टिकना, ये हमारा अंतिम पेपर होगा। और पेपर देते समय माहौल क्या होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं एकांत में होगा, चारों तरफ हलचल का माहौल होगा और ऐसे माहौल में हमें ये पेपर देना होगा। तो इसलिए लंबे समय का अशरीरी स्थिति का अभ्यास इसके लिए आवश्यक है। जब चाहे एक सेकंड में आत्मा रूपी पंछी इस देह रूपी डाल से उड़कर बाबा की याद में खो गया, इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। जानकी दादी जी 74 में पुणे में रहती थी, संतोष दीदी जी उनके पास ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों के लिए गई थी बॉम्बे से। तो संतोष दीदी जी देखती थी जानकी दादी जी कारोबार समेट के कोने में कमरे में बैठती है। एक दिन दादी से पूछा, दादी अब करती क्या है? तो दादी जी ने जवाब दिया कि मैं एकांत में बैठकर खुद को कूटती हूं। क्या कैसे कूटती हूं? आत्मा के पार्ट को बहुत रट रट के कूट कूट के घोट घोट के पक्का करती हूं। कहने का भाव है हमारी दादियां इतनी महान बन चुकी है क्योंकि उन्होंने ये पहला पाठ को बहुत पक्का किया है, तब वो इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल हुई है। तो ऐसे हमें भी स्थिति बनाना है। आपको बाबा ने गोल्डन चांस दिया है बाबा के श्रेष्ठ तपोभूमि में ज्ञान सरोवर मधुबन में रहने के लिए। सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान ये है जहां बैठे हुए हैं। इस स्थान पर आप की जो भी ख्वाहिश है, आध्यात्म आकाश में जितनी ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हो, कोई भी आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हो, वो अनुभव इस स्थान पर बैठकर आप कर सकते हैं क्योंकि इस स्थान पर बहुत अच्छी वाइब्रेशन पावरफुल होने के कारण थोड़ी सी मेहनत से ही ऐसे श्रेष्ठ गहन अनुभव हमें होते रहते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें आत्मा के पार्ट को घोट घोट के रट रट के पक्का करना है। उसके लिए अलग अलग अभ्यास आप कर सकते हैं। कैसे? इस देह रूपी शोकेस में मैं आत्मा शोपीस विराजमान हूं। दूसरा अभ्यास, इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूं। दूसरा अभ्यास, इस देह रूपी मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूं और दिव्यता की रोशनी फैला रही हूं। दूसरा अभ्यास, इस देह रूपी मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूं, जगमग रही हूं और दिव्यता की रोशनी फैला रही हूं। इस देह रूपी कार में मैं आत्मा ड्राइवर बैठी हूं और बुद्धि रूपी स्टीयरिंग के द्वारा इस कार को चला रही हूं। इस देह रूपी शिप में मैं आत्मा मोती हूँ, चमकता हुआ मोती हूँ, ऐसा अभ्यास आप कर सकते हैं। इस देह रूपी मोबाइल पोल पर मैं आत्मा रूपी लाइट विराजमान हूँ और दिव्यता का लाइट प्रकाश फैला रही हूँ। आपको जो भी अच्छा लगता है वो अभ्यास करते रहना है, लेकिन इस पाठ को हमने पक्का करना है। अभी इसका हम बहुत सुंदर अनुभव करने जा रहे हैं। करना चाहेंगे भाई? बोलिए, करना चाहेंगे? बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देता है, उसकी ब्यूटी ही है बहुत सुंदर गहन अनुभव करना। ठीक है भाई, बोलो, अभ्यास अनुभव करना चाहते हैं ना? चलो, अगर आप माइंड नहीं करोगे तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आप जो जो एकदम बुजुर्ग है, जिनको तकलीफ है ना, वो नहीं खड़े रहना, सभी खड़े हो जाएंगे। टीचर जो तकलीफ वाले हैं, उनको बैठे रहना आपने, और आमने सामने खड़े होना है। जो भी नजदीक वाला है उसको आपको दृष्टि देना है, भले दूर खड़े हो जाओ। आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप फट से बैठ जाना, ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि लंबे समय तक बैठना है। बहुत सुंदर अनुभूति हम करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मकान में निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो। मेरे सामने मेरा पड़ोसी अपने देह रूपी मकान में खिड़कियों के पास विराजमान है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने आत्मा भाई को खिड़कियों से, आंखों रूपी खिड़कियों से देख रहा हूं। हम दोनों आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। एक निराकार शिव पिता की संतान है। हम सभी आत्मा भाई भाई निराकारी दुनिया से, एक ही घर से, इस साकार सृष्टि रंग पंच पर पाठ बजाने आए हैं। हम दोनों आत्मा भाई भाई एक दो को बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं। जैसे बाप दादा की दृष्टि निराकारी निर्विकारी निरंकारी है, ऐसे मेरी भी दृष्टि निराकारी बन चुकी है। इस हॉल में आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम लगी है। जैसे आसमान में जड़ सितारों की रिमझिम है, वैसे इस हॉल में हम आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम लगी है। प्यारे शिव बाबा, हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों को देख देख हर्षा रहे, डायरेक्ट परम धाम से देख रहे हैं, और हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है यह, आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर आत्मिक दृष्टि से देखना। मुझ आत्मा को भगवान ने करोड़ों आत्माओं में से सेलेक्ट करके अपने दिल तख्त पर बिठा दिया है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान हर रोज मुझ भाग्यवान आत्मा के महिमा के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मोह निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओर मेरे सिर के चारों ओर बहुत सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मेरे दृष्टि में दिव्यता आ रही है, मेरी रूह समझकर रूह को देखने की रूहानियत की शक्ति बढ़ रही है। यह देह तो मात्र मेरा साधन है, देह तो मात्र एक मकान है, मेरा असली स्वरूप चमकता हुआ जगमगता हुआ दिव्य सितारा है। मस्तक सिंहासन पर
मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। जग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए।
अभी अपना साथी चाहे तो आप बदल सकते हैं, साज अगर है तो इधर उधर टर्न करके व्यक्ति को आप चेंज कर सकते हैं आमने सामने देखकर, अगर चाहे तो, नहीं तो वही रख सकते हैं। बैठना नहीं है, जिसकी तकलीफ है वो बैठे, सिर्फ आप बैठ जाइए, बैठ के करो, आमने सामने बैठो, आमने सामने बैठ के करो। राकेश भाई बैठ के किशोर भाई की तरफ देखो। ओह, राजाओं के राजा बनाने वाले बाबा ने हम सभी रॉयल आत्माओं को समान के सिंहासन पर बिठा दिया है। इतना बड़ा टाइटल, विश्व कल्याणकारी का टाइटल हमें दिया है। हम 2500 वर्षों तक माया की गुलामी में थे, बाबा ने हमें माया की गुलामी से निकालकर राजाई प्रदान की है। मैं आत्मा राजा हूँ, स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर अनुशासन और नियंत्रण करने वाला स्वराज अधिकारी हूँ। क्या कहने मेरे भाग्य का, भगवान ने मुझे संगम युग में स्वराज अधिकारी सो भविष्य में विश्वराज अधिकारी बना दिया है। अपनी राजाई का मुझे नशा है, मेरे समक्ष दूसरा आत्मा राजा विराजमान है। हम दोनों आत्मा आत्मा राजा राजा एक दो को बड़े सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। इस हॉल में आत्माओं रूपी राजाओं की दरबार लगी है। प्यारे बाबा परम धाम से हम सभी आत्माओं रूपी राजाओं की दरबार को, सभा को देख देख बहुत हर्षा रहे हैं। और हम सभी आत्माओं रूपी राजाओं पर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। राजा का नशा मेरे चेहरे पर स्पष्ट अनुभव हो रहा है। वार में वहां मेरा बाबा, वहां मेरा भाग्य, बाबा ने मुझे राजा बना दिया है। राजाई का नशा, राजाई की खुमारी, राजाई की मस्ती मेरे चेहरे पर स्पष्ट अनुभव हो रही है।
गजब है गजब तो गजब है गजब तो रूहों का वालिद, गजब है गजब तो गजब है गजब तो गजब है गजब तो रूहों का वालिद, गजब है गजब। इस जमीन पे है तेरे करिश्मे अजब, इस जमीन पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब तू गजब है गजब
गजब खुशबू रूहानी से महके जहां वो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां दर चलवे में है तेरी खुशबू यहां तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन तुझको कहते खुदा तुझको कहते खुदा तुझको कहते हैं रब तुझको कहते खुदा तुझको कहते हैं रब तू रूहों का वालिद गजब है गजब तू 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 रूहों का वालिद गजब है
ओम शांति थैंक यू सभी बैठ जाएंगे तो जितनी हमारी निराकारी स्थिति बढ़ती जाती है उतनी निर्विकारी स्थिति बढ़ती जाती है क्योंकि आत्मा रूपी बीज से जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है उस पेड़ पर दिव्य गुणों के फूल और फल लगते हैं और देह अभिमान रूपी जो बीज है उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है उस पर विकारों के फल फूल लगते हैं इसलिए हमें देह भान के बीज को योग की अग्नि में जलाकर भस्म कर देना है और आत्मा रूपी बीज को स्नेह का पानी पुरुषार्थ का पानी देकर जीवन के पेड़ पर दिव्य गुणों को बहुत अच्छी तरह से खिलाते रहना है तो निराकारी से निर्विकारी बनते हैं और निर्विकारी से निरहंकारी बनते हैं अब निरहंकारी ये देहभान का अहंकार नहीं लेकिन बाबा के पास आने के बाद जो हमें उपलब्धियां होती है प्राप्तियां होती है सिद्धियां होती है उसका कभी कभी हमें आम भाव आता है मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं बहुत अच्छा ज्ञानी हूं बहुत अच्छा योगी हूं अरे भाई कहां से योगी हूं खाली हाथ आया था बाबा के पास काली झोली थी ये सारी बाबा की अमानत है तो इन बातों का भी अहंकार न रखना इसको कहते हैं निरअहंकारी बनना तो हम सभी इन तीनों बातों को बहुत अच्छी तरह से अभ्यास में लाएंगे हमारी आदरणीय दीदी जी दिव्या दीदी जी आई थारी तालियां तो बजाओ भाई साहब अच्छी तरह से और अच्छी तरह से जोर से बजाओ अच्छी तरह से देखो दीदी का शुभ संकल्प के द्वारा आप सभी को मधुबन की सैर करने मिली और इतने सुंदर अनुभव करने के लिए मिले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।